ऐसी आत्मा की भी तृप्ति है यही वचन। स्वर्ग जीवन रोटी आंखों की ये ज्योति, ये सत्य वचन, ये जीवित वचन, सबसे उत्तम ज्ञान यही है। आओ सुने सत्य वचन।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु मसीह का वचन ही वो सत्य वचन है जो हमें आत्मिक सामर्थ और शांति देता है और अंधकार में भटकने से हमें बचाता है। तो आइए हम कुछ देर के लिए आज के वचन को ध्यान पूर्वक सुने और अपने जीवन के लिए आत्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
हमें आशा है आप प्रभु की दया से कुशल हैं और अपने सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। स्वाइए इससे पूर्व कि हम अपने कार्यक्रम को आरंभ करें, अपने मनों की तैयारी और आत्मिक सहायता के लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे महापराक्रमी जीवित और सच्चे परमेश्वर पिताजी, हम बड़ी दीनता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं इन मधुर और पवित्र क्षणों के लिए जो आपने अपनी महान अनुकंपा से हमको प्रदान किए हैं कि हम आपके जीवित और सत्य वचन का अध्ययन कर सकें। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जबकि हम रोमियो की पत्री का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं, आप हमारी सहायता करें कि इस पत्री के द्वारा आपके संदेश को हम समझ सकें, उसे ग्रहण कर सकें और उस पर विश्वास ला सकें। हमारी प्रार्थना है कि यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी रोग से पीड़ित है, किसी समस्या में उलझा हुआ है या उसके जीवन में आपके प्रति नाना प्रकार के संदेह हैं, तो प्रभु आप उनकी सहायता करने की कृपा करें। हमारे मध्य में उत्पन्न होने वाली समस्त बाधाओं को दूर कर दें ताकि हम बड़ी स्वतंत्रता के साथ आपके पवित्र वचन का अध्ययन कर सकें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ तो मित्र, आइए अपने कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। आज हम नए नियम से रोमियो की पत्री का बाइबल अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। हमने पिछले दिनों में प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक का अध्ययन किया और हमने देखा कि परमेश्वर पिता ने किस प्रकार अपने अनुग्रह के सुसमाचार को पापी मानव तक पहुंचाया। सर्वप्रथम उन्होंने अपने पुत्र के द्वारा मानव जाति पर अपने प्रेम को प्रकट किया। परमेश्वर ने इस प्रेम को कैलवरी के क्रूस पर प्रकट किया, जहां प्रभु यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य रक्त देकर एक बहुमूल्य और संपूर्ण सिद्ध बलिदान दिया कि उसके द्वारा अर्थात उस पर विश्वास लाने के द्वारा मानव जाति अपने पापों से छुटकारा पा सके, उसके दंड से मुक्ति पा सके। न केवल मुक्ति वरन अनंत काल तक परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हो सके। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के पश्चात प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरित पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर इसी सुसमाचार को प्रभु जी की योजना अनुसार सुनाने लगे। सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो गए। यही प्रभु यीशु मसीह आने वाले समय में इस संसार का न्याय करने के लिए आएंगे। वो दोषियों को दंड देंगे और जिन्होंने उन्हें अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है उन्हें वे अनंत काल का जीवन बिताने के लिए अपने साथ रखेंगे, अर्थात वे परमेश्वर के साथ अनंत काल तक जीवन व्यतीत करेंगे। यही सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह की योजना को हम प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक उसके प्रथम अध्याय के 8वें पद में पढ़ते हैं। वहां बताया गया है कि सुसमाचार पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया व सामरिया, तब पृथ्वी के छोर तक पहुंचाया जाए। और इस प्रकार इसी योजना के अंतर्गत प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए प्रेरितों की सेवा नियुक्त की। पत्रस को यहूदियों व इसराइल जाति के लिए तथा पौलुस को गैर यहूदियों को सुसमाचार सुनाने के लिए अपना प्रेरित नियुक्त किया, परंतु अन्य जातियों में सेवा का द्वार संत पत्रस अर्थात प्रेरित पत्रस द्वारा ही खोला गया, जबकि उन्होंने रोमी पलटन के सूबेदार कुर्नुलियस को सुसमाचार सुनाया और उसे और उसके समस्त कुटुंबियों को मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया। उसके पश्चात ये सेवा पौलुस प्रेरित को सौंप दी गई और इसी सेवा के अंतर्गत पौलुस यरूशलेम के बाहर इस उद्धार के सुसमाचार को ले गए। परमेश्वर पिता ने उन्हें बताया कि उसे रोम में भी मेरी साक्षी देनी है। और पिछले बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हमने देखा कि एक भयंकर समुद्री यात्रा द्वारा पौलुस रोम पहुंचे। रोम में वे एक प्रचारक के रूप में नहीं बल्कि एक बंदी के रूप में गए और इन्हीं बंदियों के साथ वह स्वतंत्रता पूर्वक निर्भीकता से परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार सुनाते रहे। यद्यपि पौलुस बेड़ियों में थे, परंतु परमेश्वर का संदेश स्वतंत्र था। परंतु रोम पहुंचने से पूर्व उनकी बड़ी लालसा थी कि वे रोम वासियों को सुसमाचार सुनाएं, और इसलिए अपनी तीसरी यात्रा के मध्य उन्होंने कुरंतुस नगर छोड़ने से पूर्व एक पत्र रोम के निवासियों को अर्थात रोम के विश्वासियों को लिखा। इसे रोमियों की पत्री के नाम से जाना जाता है। जी हां, रोमियों की पत्री वह पत्र है जो प्रेरित पौलुस ने रोम के विश्वासियों को लिखा था। अब हम आपके लिए रोमियों की पत्री का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। इससे पूर्व कि हम इस पत्री का अध्ययन आरंभ करें, हम चाहेंगे कि आपको पत्री की मुख्य मुख्य बातों के विषय में बता दें, उनसे परिचित करा दें। मुख्य मुख्य बातों में यही बातें हैं कि इस पत्री का लेखक कौन है, विषय क्या है, उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हम इस पत्री के लेखक के विषय में कुछ जानकारी आपको देंगे। इस पत्री के लेखक प्रेरित पौलुस हैं। पौलुस की पत्रियों के द्वारा हम परमेश्वर के दिव्य प्रकाशन के एक भिन्न ढंग को जान सकते हैं। ये पत्रियां हमें परमेश्वर के प्रकाशन से एक अन्य ढंग से अवगत कराती हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपना संदेश देने के लिए अनेक साधनों का प्रयोग किया। परमेश्वर ने मनुष्य को सर्वप्रथम पेंटाट्योक अर्थात पंच ग्रंथ दिया, जिसके अंतर्गत व्यवस्था अर्थात मूसा की व्यवस्था आती है। इसे उन्होंने अपने दास मूसा के द्वारा दिया। तब परमेश्वर ने इतिहास, कवियों के ग्रंथ तथा भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें प्रदान की, जिनमें आने वाले समय की तथा युग के अंत की चर्चा की गई है। तब परमेश्वर ने 4 सुसमाचार प्रदान किए। और अब हम एक नए खंड पर आते हैं, और ये खंड है पत्रियां। उनमें से सबसे अधिक पत्रियां प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई हैं। ये पत्रियां जो नए नियम में हमारे पास हैं, ये वास्तव में उत्साहपूर्ण हैं। जहां तक मेरा और आपका संबंध है, ये अत्यंत व्यक्तिगत हैं, और इनको पढ़कर ऐसा आभास होता है कि ये मेरे और आपके लिए या मुझे को लिखी गई हैं या आपको लिखी गई हैं। और इन पत्रों के द्वारा जो प्रेरित पौलुस तथा अन्य प्रेरितों के द्वारा लिखी गई हैं, प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से बोलते हैं। आज असंख्य विश्वासियों को प्रभु जी इन पत्रियों द्वारा अपना संदेश दे रहे हैं। रोमियों की पत्री संसार के लिए एक महान घोषणा है। दूसरे शब्दों में, रोमियों की पत्री में संसार के लिए महान सुसमाचार घोषित किया गया है, क्योंकि प्रेरित पौलुस के लिए सुसमाचार सार्वभौम अर्थात एकता विषयक है। और रोम उस संसार का केंद्र है जिस संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दिया। रोमियों की पत्री में हम पत्री तथा पत्र दोनों का प्रभाव देखते हैं। पत्री से तात्पर्य होता है साहित्यिक कार्य। रोमियो के नाम पौलुस की पत्री उसके 15वें अध्याय के 15 और 16 पदों में प्रेरित पौलुस इस प्रकार से बताते हैं, परंतु मैंने तुम्हें कुछ विषयों पर पुनः स्मरण दिलाने के लिए बड़े हियाव के साथ लिखा है। ये उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया था कि गैर यहूदियों के लिए मसीह का सेवक बनूं और परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, कि गैर यहूदी रूपी मेरी भेंट पवित्र आत्मा से पवित्र की जाकर ग्रहण की जाए। और यहां प्रेरित पौलुस ये स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं गैर यहूदियों के मध्य सेवा करने के लिए चुना गया हूं। वो ये बात भी स्पष्ट करते हैं कि शमौन पत्रस को इसराइल जाति के लिए प्रेरित चुना गया है। उदाहरण स्वरूप गलातियों की पत्री में वो इस प्रकार से कहते हैं, गलातियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 8वां और 9वां पद, क्योंकि जिसने पत्रस द्वारा खतना वालों में प्रेरिताई का कार्य प्रभावपूर्ण रीति से किया, उसी ने मुझसे भी गैर यहूदियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। जब उन्होंने उस अनुग्रह को पहचाना जो मुझे दिया गया था, तो याकूब, कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के स्तंभ समझे जाते थे, मुझे और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम गैर यहूदियों में और वे खतना वालों में कार्य करें। और मेरे मित्र, आप देखेंगे कि प्रेरित पौलुस विशेष रूप से अन्य जातियों के लिए प्रेरित थे। और जब आप रोमियो की पत्री के अंतिम अध्याय का अध्ययन करेंगे, तो आप देखेंगे कि जितने लोगों से प्रेरित पौलुस परिचित हैं, उनमें से अधिकांश लोग अन्य जाति हैं। रोम की कलीसिया एक अन्य जाति कलीसिया थी, अर्थात यहूदी विश्वासियों से निर्मित कलीसिया नहीं थी। पौलुस ये बात भी स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई अन्य व्यक्ति रोम में कलीसिया की स्थापना करता, तो वे रोम कदापि नहीं जाते। परंतु वो ये भी कहते हैं, इसलिए जहां तक मेरा संबंध है, मैं तुम्हें भी जो रोम में है सुसमाचार प्रचार करने के लिए उत्सुक हूं। जैसा कि हम रोमियों की पत्री के प्रथम अध्याय के 15वें पद में पढ़ते हैं, इसी प्रकार साधु सुंदर सिंह तिब्बत के निवासियों को सुसमाचार सुनाने के लिए उत्सुक थे। मित्रवर, प्रेरित पौलुस सुसमाचार प्रचार के लिए रोम जाना चाहते थे। और प्रेरितों के कार्य के 26वें अध्याय में वो राजा अग्रिप्पा के समक्ष उस संदेश को दोहराते हैं जो परमेश्वर ने स्वयं प्रकट होकर प्रेरित पौलुस को दिया था। यदि आप चाहें तो प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक के 26वें अध्याय के 17 और 18 पदों को देख सकते हैं, जहां इस प्रकार से बताया गया है, मैं तुझे तेरे लोगों से और गैर यहूदियों से भी, जिनके पास तुझे भेज रहा हूं, छुड़ाता रहूंगा, कि तू उनकी आंखें खोले, जिससे कि वे अंधकार से ज्योति की ओर तथा शैतान के राज्य से परमेश्वर की ओर फिरें, जिससे कि वे पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ उत्तराधिकार प्राप्त करें जो मुझ पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र हुए हैं। सो इस प्रकार से ये संदेश वो राजा अग्रिप्पा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि पौलुस रोम जाने के लिए उत्सुक थे, परंतु फिर भी वो ये कहते हैं, जैसा कि 15वें रोमियों की पत्री के 15वें अध्याय में उसके 20वें पद में हम पढ़ते हैं, मेरे मन की आकांक्षा ये रही है कि जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया, वहां सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। सो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जहां कोई दूसरा प्रेरित सुसमाचार प्रचार के लिए गया, वहां पौलुस प्रेरित नहीं गए। वो रोम इसलिए गए क्योंकि वहां उनसे पूर्व कोई अन्य प्रेरित सुसमाचार प्रचार करने नहीं गया। उनके मन की आकांक्षा यही रही कि जहां सुसमाचार कभी नहीं सुनाया गया, मैं वहां जाकर सुसमाचार सुनाऊं। यदि सुसमाचार प्रचारक इस नियम को अपना लें, तो बहुत शीघ्र जगत के छोर तक सुसमाचार पहुंच सकता है। किंतु प्रचारक तैयार खाने को घोटने के आदि हो गए हैं। वे वहीं जाते हैं जहां दूसरे लोग भी जाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेरित पौलुस रोम नहीं गए, और जब वह गए तो एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नहीं गए, वरन बंदी के रूप में गए। वे वहां किराए के घर में रहते थे और एक रोमी सिपाही उनके घर पर तैनात रहता था। फिर भी रोम में कलीसिया की स्थापना हो गई। ये कैसे संभव हुआ? मित्र, संभवतः आप कहें कि ये दूरभाषा अर्थात टेलीफोन द्वारा या रेडियो द्वारा संभव हुआ होगा। तो मित्रवर, उस समय में ये सब सुविधाएं प्राप्त नहीं थीं। रोम की कलीसिया की स्थापना प्रेरित पौलुस ही ने की, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु प्रश्न ये उठता है कि कैसे। मित्र, रोम एक अत्यंत आकर्षक नगर था और प्रेरित पौलुस रोम कभी नहीं गए और इनके अतिरिक्त कोई दूसरा प्रेरित भी वहां नहीं गया, फिर भी वहां कलीसिया अस्तित्व में आ गई। ये तो वास्तव में आश्चर्य कर्म है, यह आश्चर्य की बात है। और आप भी ये प्रश्न कर सकते हैं कि ये कैसे संभव हुआ। हम आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। मित्र, प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक के अध्ययन से आपको ये तो ज्ञान हो ही गया कि पौलुस ने अपनी यात्राओं के समय अनेक रोमी उपनिवेशों तथा नगरों में भ्रमण किया। उस समय रोमी साम्राज्य का विस्तार बहुत अधिक था और जहां वे गए वहां अनेक पुरुष व स्त्रियां उनके संपर्क में आए और उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार के विषय में सुना और मसीह पर विश्वास लाए। उनमें से अनेक लोग रोम नगर वापस पहुंच गए। उनमें से एक उदाहरण अक्विला तथा प्रिस्किल्ला दंपत्ति का है। इसके विषय में प्रेरितों के कार्य की पुस्तक उसके 18वें अध्याय के 1-3 पदों में हम पढ़ सकते हैं। इस प्रकार कुरिन्थुस में पौलुस की भेंट अक्विला तथा प्रिस्किल्ला से हुई। ये दोनों यहूदी पति पत्नी रोम के निवासी थे। इनका घर रोम में था। राजा क्लौदियस द्वारा सताए जाने के कारण उन्हें रोम छोड़ना पड़ा। वे कुरिन्थुस नगर में आए और वहां उनकी भेंट पौलुस से हो गई और वे फिर वापस इफिसुस गए और मसीह के सच्चे गवाह बन गए। उन्होंने अपोल्लुस के सुसमाचार को सुना और उसको गलत पाया और तब उन्होंने अपोल्लुस को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। और जब पौलुस ने रोम वासियों को अपनी पत्री भेजी, ये दंपत्ति पुनः रोम वापस लौट चुके थे और पौलुस ने उन्हें नमस्कार भी भेजा। और इस प्रकार पौलुस रोम में रहने वाले अनेक लोगों को जानते थे और वे लोग भी पौलुस को भली भांति जानते थे। और इस प्रकार पौलुस उनसे रोम के अतिरिक्त किसी अन्य नगर व देश में मिले और उन्हें मसीह के निकट ले आए। और इस प्रकार पौलुस ने रोम नगर से अत्यंत दूर रहकर भी वहां कलीसिया की स्थापना की। जिन्हें उन्होंने मसीह के विषय में बताया वे जाकर रोम में बस गए। और इस प्रकार पौलुस ने रोम जाए बिना ही वहां कलीसिया को स्थापित किया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रोम कोई प्रेरित नहीं गया, रोम नगर कोई भी प्रेरित नहीं गया। मित्र, जिस समय पौलुस ने रोमियों के नाम अपनी पत्री को भेजा था, उस समय तक उन्होंने रोम नगर को नहीं देखा था, परंतु रोम एक ऐसे विशाल जलयान के समान था जो ऐसी ऊंची ऊंची लहरें उछालता है जो दूर किनारे तक जाती हैं। उसका प्रभाव रेडियो प्रसारण के समान था जो बहुत विशाल क्षेत्र को प्रभावित करता है। प्रेरित पौलुस रोमी साम्राज्य की अनेक बातों से भलीभांति परिचित थे। वे इस विशाल साम्राज्य के अनेक नगरों व उपनिवेशों में रहे। वे फिलिप्पी तथा थिस्सलुनीके जैसे रोमी नगरों में रहे, इसलिए वे रोमी परंपराओं, नियम, कानून, व्यवस्था, भाषा, ढंग तथा सभ्यता से पूर्णता परिचित थे। वे रोमी सड़कों पर सिपाहियों से भेंट कर चुके थे। वे उनके बाजारों व जेलों अर्थात बंदीगृहों से भी परिचित थे। उनके बंदीगृहों में वे सोए थे और सुसमाचार भी सुनाया था। यहां तक कि वे रोमी नागरिकता का भी लाभ उठा चुके थे। और इस प्रकार पौलुस रोम के विषय में अच्छी जानकारी रखते थे। विश्व की इस महान राजधानी के सुविधा बिंदु से वे संसार के भटके हुए लोगों को यह सुसमाचार सुनाना चाहते थे कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को बलिदान होने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास लाए वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। आज हम इस पत्री के मुख्य विषय पर विचार करेंगे। रोमियों की पत्री का मुख्य विषय परमेश्वर की धार्मिकता है। और जब इस पत्र के इस विषय पर हम विचार करते हैं तो हम स्वयं को एक अपूर्ण अर्थात अधूरा व्यक्ति पाते हैं। ये वो संदेश है जो युगों से मनुष्य को दिया जा रहा है, परमेश्वर की धार्मिकता। परंतु खेद की बात यह है कि इस विषय को संसार सुनना नहीं चाहता और ना ही वो परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण करना चाहता है। मित्रवर, यह सत्य है कि आज संसार मनुष्य की प्रशंसा और महिमा की चर्चा सुनना चाहता है। वो परमेश्वर की अपेक्षा मनुष्य को ऊंचा उठाना चाहता है, सृष्टिकर्ता से ऊंचा उठाना चाहता है सृष्टि को। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि आज कोई भी सेवकाई जो मनुष्य को महिमा देने के उद्देश्य से की जाती है, जो मनुष्य की महिमा करना सिखाती है, जो मनुष्य की संपूर्ण भ्रष्टता व दुराचार को उजागर नहीं करती और जो ये प्रकट नहीं करती कि मनुष्य पूर्ण रूप से भ्रष्ट है और इसका सर्वनाश ही होगा, और जो शिक्षा इस सत्य को प्रकट नहीं करती, वो ना तो किसी प्रकार मानव जाति का उपचार कर सकती है और ना वो मानव जाति का उत्थान ही कर सकती है। मित्रवर, मानव के पाप का केवल एकमात्र उपचार प्रभु यीशु मसीह हैं। वो उसकी आत्मा को छूकर स्वस्थ कर सकते हैं, क्योंकि वह स्वयं आत्मा है, वो जीवित हैं। मनुष्य के पापों का निवारण तथा उसका उत्थान केवल परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह द्वारा ही संभव है, और ये वो उपचार है जो परमेश्वर द्वारा मानव को प्रदान किया गया है। ये परमेश्वर का वरदान है जो स्वर्ग से आया है, ये मनुष्यों की ओर से नहीं है। प्रिय मित्र, पवित्र शास्त्र बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के कारण पकड़वाए गए और हमारे धर्मी ठहराए जाने के कारण मृतकों में से जीवित हुए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की धार्मिकता है जो विश्वास द्वारा प्रत्येक पापी को परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराती है। रोमियो की पत्रिका यही प्रमुख संदेश है। मित्र, मैं इस संदर्भ में आपका ध्यान लूका रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय के 39वें पद से लेकर 43वें पद पर ले जाना चाहता हूं। आप चाहें तो अपनी पवित्र बाइबल से इसे देख सकते हैं। यह उस पश्चातापी डाकू का वर्णन है जिसे रोमी शासक ने अपराधी घोषित कर दिया था और उसे रोमी साम्राज्य में रहने के अयोग्य घोषित करके मृत्यु दंड दे दिया था। परंतु जिस व्यक्ति को रोमी शासक ने अपने राज्य में रहने के अयोग्य घोषित किया, उसी अयोग्य और तिरस्कृत व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य में रहने के योग्य बना दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रिय मित्र, परमेश्वर पिता खोए हुए पापियों को बचाते हैं। वो इस संसार के द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को निर्दोष, निष्कलंक व पवित्र ठहराते हैं और इस संसार में मृत्यु दंड के योग्य अपराधी को अनंत जीवन के योग्य ठहराते हैं। परमेश्वर मेरे और आपके समान खोए हुए पापियों को वापस फेर लाते हैं। वो उन्हें परमेश्वर के परिवार में दोबारा से वापस ले आते हैं। प्रिय मित्र, ये कार्य कैसे संभव होता है? ये उनके पुत्र की क्रूस पर मृत्यु के द्वारा संभव होता है। परमेश्वर ने आपके पापों की क्षमा का मूल्य क्रूस पर स्वयं चुका दिया। ये कार्य इसलिए नहीं हुआ कि मैं और आप योग्य हैं, कदापि नहीं। ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर ने मानव से अत्यंत प्रेम किया है। अपने प्रेम के वशीभूत होकर परमेश्वर ने मनुष्य को विनाश से बचाने का प्रबंध किया। रोमियों की पत्रिका यही महान संदेश है। मित्रवर, एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम माइकल फराडे था, उन्होंने इस पुस्तक का अध्ययन किया। उन्होंने अनुभव किया कि ये पत्री वास्तव में मसीह यीशु पर विश्वास लाने में सहायता करती है। और जिस समय ये महान वैज्ञानिक अपनी मृत्यु शैया पर थे, उस समय समाचार पत्र के एक संवाददाता ने उनसे पूछा कि आपके क्या विचार हैं, आप क्या कल्पना करते हैं? फ्रेडे ने कहा, मेरी अब कोई कल्पना नहीं, कोई विचार नहीं। मेरा प्रभु यीशु मसीह पर दृढ़ विश्वास है, जिसने मेरे पापों के बदले अपना प्राण दिया, जिसने मेरे स्वर्ग जाने का मार्ग तैयार किया है। प्रिय मित्र, रोमियो की पत्रिका ये मुख्य संदेश है। सो आज समय अभाव के कारण हम यहीं पर ठहर जाते हैं। इसी संदेश के साथ अगले कार्यक्रम में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दें, प्रभु आपको आशीष दे।
आप जिस हाल में है, गम है या है खुशी, आइए आप यीशु के पास आइए। राज क्या है मसीह, पास खुद देखिए, चोट भी गर लगे आप मुस्काइए। आप जिस हाल में है, जहाँ से मिली है बुराई या कहीं, अपना जिसको कहे वो मिला ही नहीं। आप जब जब गिरे लोग तब तब हंसे, आग बढ़ के संभाले जो था ना कहीं। है मसीह यार सबका आपको चाहता, आके यीशु के सीने से जिस हाल में है। जो मसीह पास आया वो है खुश नसीब, अब तो उसको यहाँ कुछ नहीं चाहिए। प्यार का एक खजाना मसीह ने दिया, सारी उसकी है खुद ही आजमाई। राह उसकी मसीह, मंजिल उसकी मसीह, आप भी उस मसीह को अपनाइए। आप जिसे
प्रिय श्रोताओ, अभी आपने हमारा ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन सुना। निश्चय ही हमारा ये बाइबल अध्ययन आपके जीवन के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। यदि आप परमेश्वर की भली और सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में जानना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, एक बार हम फिर से बता दें कि आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi.ttb@radiovv.org, hindi.ttb@radiovv.org। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।